Market Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331-4444 and 2342-1050. If you are calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Nikhil Kumar.
नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. हम लेकर आए हैं आपके लिए शेयर बाजार से जुड़ी खबरें और व्यापार जगत की हलचलों के बारे में जानकारी. आज सोमवार है और आप अपनी आर्थिक जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमें फोन कर सकते हैं. हमारे विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे. आप हमें 2331-4444 और दूसरे नंबर 2342-1050 पर कॉल कर सकते हैं. दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें. और श्रोताओं, आपके प्रश्नों का उत्तर देने तथा आर्थिक खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
नमस्कार, धन्यवाद.
और सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ लालिमा.
थैंक यू निखिल. यस, द हेडलाइंस फ्रेंड्स. Benchmark indices settle at fresh closing highs. Sensex ends over 74,700. Nifty closes at 22,666. Gold surpasses a record high of 71,000 rupees for the first time. Silver price surges to record highs. And oil prices decline as global geopolitical tensions ease.
घरेलू शेयर बाजार नई ऊंचाई पर पहुंचे. सेंसेक्स 74,700 से अधिक और निफ्टी 22,666 अंक पर आकर बंद हुआ. सोना पहली बार 71,000 से ऊपर आकर नई ऊंचाई पर पहुंचा. चांदी ने भी रिकॉर्ड उछाल आया. और वैश्विक भू राजनीतिक तनाव में कमी के बीच तेल की कीमतों में गिरावट. और सबसे पहले नजर डालते हैं सेंसेक्स पर. सकारात्मक वैश्विक संकेतों और सूचना प्रौद्योगिकी तथा ऑटो कंपनियों में खरीदारी के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक आज अपने नए उच्चतम स्तर पर बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 494 अंक यानी कि 0.67% के उछाल के साथ 74,742.50 अंक की नई ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुआ. दिन के कारोबार में सेंसेक्स में 621 अंक यानी 0.83% का उछाल आया था और ये 74,869 अंकों के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 153 अंक यानी 0.68% की तेजी के साथ 22,666 अंक पर बंद हुआ. दिन के कारोबार में निफ्टी 184 अंक यानी 0.81% की तेजी के साथ अब तक के सर्वोच्च स्तर 22,697 अंकों के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. विस्तारित बाजार में बीएससी मिड कैप सूचकांक में 0.26% की बढ़त हुई और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.06% की गिरावट आई.
एंड बिफोर वी गो एनी फर्दर, वी आर नाउ जॉइंड बाय योगेश कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली. जी योगेश, सवाल पूछे अपना.
नमस्कार आप सभी को. शिशिर जी को भी नमस्कार.
नमस्कार
सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे एक रिटेल निवेशक जो होता है, खुदरा निवेशक, वो होने के नाते हम ज्यादातर निवेश अपना म्यूचुअल फंड में, गोल्ड बॉन्ड में और लोकेशन करते हैं, पर जो सर ये एचएनआईज होते हैं, ये कहाँ पे निवेश करते हैं और क्या ये भी म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो उतना ही रिटर्न पाएंगे या इनका कुछ अलग माध्यम होता है और क्या उम्मीद कर सकते हैं निवेश?
देखिए योगेश जी, ऐसा कोई अंतर नहीं होता. देखिए, म्यूचुअल फंड में बहुत खास चीज होता है कि जो कुछ भी रिटर्न है वो सबके लिए एक बराबर है. वहां पर कोई भी जो यूनिट होल्डर है वो एक बराबर है, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं होता है. रहा सवाल उनके निवेश करने का, शेयर बाजार में क्योंकि बड़ी रकम वो कर सकते हैं तो वो लगाते हैं, और शेयर बाजार में भी उनकी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वहां पर उनकी काफी नजर होती है, वो हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज करते हैं, यानी कि एक बाड़बंदी करते हैं। लेकिन अगर आप छोटे निवेशकों की तुलना करेंगे म्यूचुअल फंड में, तो वो ज्यादा पैसा छोटे निवेशकों की ओर से आता है बजाय की जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है वो आपके बड़े निवेश म्यूचुअल माफ कीजिएगा शेयर बाजार, और वो भी खासतौर पर एफएनओ में काफी बड़े पैमाने पर पैसा लगाते हैं।
हमारे अगले श्रोता है फरीदाबाद से प्रदीप। हेलो
हेलो
प्रदीप जी, आपका प्रश्न क्या है?
सर मैंने 5 साल से सिप में कर रहा था म्यूचुअल फंड में, मैंने अभी लास्ट मंथ कुछ जो ना म्यूचुअल फंड सेल किए, तो मुझे ये जानना था कि इसमें कितना अमाउंट टैक्सेबल होता है और किसको टैक्स अमाउंट को कैसे निकालते हैं।
ओके प्रदीप जी, अगर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड है, आप दो तरीके से देखिए, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, एक डेट म्यूचुअल फंड की बात है। अब चूंकि डेट म्यूचुअल फंड में इस समय आपको पता है कि अब इंडेक्सेशन खत्म कर दिया गया है, तो वहां पे आपके लिए कर की जो देनदारी है उसका अलग तरीके से आकलन होगा। इक्विटी का जो आकलन होगा, जो शेयरों में जो पैसा लगा हुआ है उसके आकलन की बात करें, तो वो बिल्कुल शेयरों की तरह ही है, जहां पर आपको याद होगा कि कुछ समय पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन की व्यवस्था भी की गई थी, तो जो वहां पर एक जो 2017-18 में जब ये व्यवस्था की गई थी, तो पहले के मुनाफे को ग्रैंडफादरिंग यानी कि उसको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है वहां पर जो कुछ भी आपको मुनाफा हुआ है, यदि वो रकम 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, और अगर 1 साल के भीतर यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसका आकलन जो नियमित आपकी जितने भी मुनाफा हुए उस पर आपको देना होगा।
Alright, we have Kush online and he's calling us all the way from Chhattisgarh. जी कुश जी, सवाल पूछे अपना।
जी गुड इवनिंग सर, मैं कुश बोल रहा हूँ। किसी सर को मेरा नमस्कार।
नमस्कार कुश जी।
सर मेरा सवाल ये है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं, इसको जरा विस्तार से बताएं। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि कैसे न्यूज शेयर स्टॉक को इफेक्ट करता है।
देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, भविष्य की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि कल के क्या होगा उस पे हम एक अनुमान लगा करके वायदा करते हैं। शेयर बाजार में दो तरह के सौदे होते हैं, एक जो हाजिर सौदा होता है, एक वायदा सौदा होता है। हाजिर सौदा जिसको हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं, और आपका जो वायदा सौदा उसको हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं। फ्यूचर में आपका जो है वो ऑप्शन एंड फ्यूचर दोनों की सुविधा होती है। बहुत ही सरल भाषा में अगर हम कहें कि फ्यूचर ट्रेडिंग दरअसल कल क्या कुछ हो सकता है उसका अनुमान लगा करके हम सौदा करते हैं। कैश और फ्यूचर ट्रेडिंग में अंतर यह होता है कि कैश में जहां आपको पूरी रकम तुरंत देनी होती है जब आप सौदा करते हैं, वहीं फ्यूचर में आप मार्जिन मनी देते हैं, यानी कि अगर 100 रूपये का आपने फ्यूचर किया है तो आप 5 रूपया देकर के 10 रूपया देकर के आप उसमें सौदा कर सकते हैं। सेबी की हालिया एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि छोटे निवेशकों के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग कोई फायदे का सौदा नहीं है, बल्कि वहां पर उनके हाथ ही जले हैं। तो छोटे निवेशकों के लिए बेहतर है कि वो हाजिर सौदे में जाएं, और या फिर उनके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प है वो म्यूचुअल फंड का है। आपका दूसरा सवाल था कि खबरें कैसे प्रभावित करती हैं। देखिए शेयर बाजार को आपको समझना है तो ये एक बात मन में बिठा लीजिए कि बाजार में भावनाएं बहुत चलती हैं। भावनाएं जो भी सुन रही हैं, जो भावना वो अन्यथा ना ले, यहां पर भावनाओं से मतलब इमोशन और सेंटीमेंट से है, और ये जो इमोशन और सेंटीमेंट बनाने की बात होती है वो आपकी अलग अलग घटनाक्रम है, चाहे वो सूचनाएं हैं चाहे वो खबर है, और एक सूचना या एक खबर किसी भी कंपनी के भूत और भविष्य, भूत को उजागर करती है और उसका भविष्य बिगाड़ सकती है या बना सकती है, तो उसी आधार पर आप उसमें निवेश का फैसला करते हैं। तो खबरें जो है वो शेयर बाजार को काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित करती हैं, क्योंकि जो हो चुका है बाजार उसको डिस्काउंट कर देता है, जो होने वाला है उस पर ज्यादा दांव लगाता है, इसीलिए भावनाएं इमोशन सेंटीमेंट्स ये ज्यादा बाजार में चलती हैं जो खबरों के जरिए आती है।
और इसीलिए कहा भी जाता है कि अगर आप खबरों से जुड़े रहते तो शेयर बाजार में नजरें बनी होनी चाहिए,
लेकिन खबर निवेशों पर जो नवीस होते हैं, जो हम लोग रिपोर्टर्स कह लीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंट कह लीजिए, उस पर सेबी की खास नजर होती है कि वो खबरों का कहीं फायदा उठा करके भेदिया कारोबार तो नहीं कर रहे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं।
और इस बीच जयपुर से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
हाँ सर धन्यवाद, आप पिछले मंडे नहीं आए थे, मैं सोचा था कि आप आएंगे, तो उसके पहले वाले मंडे में मैंने
जी क्षमा चाहेंगे उसके लिए
पिछले मंडे आप नहीं आए थे सुशील जी, तो मैंने आपके लिए प्रश्न रखा था, इसके पहले मैंने आपसे पूछा था,
आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछिए
इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में
जी।
तो तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड में हम 1 ग्राम मिनिमम लेते हैं और शायद 50 ग्राम मैक्सिमम है, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का भी कुछ ऐसा है क्या मिनिमम और मैक्सिमम का, और क्या इसे इंडिविजुअल ले सकते हैं क्या?
देखिए, दो अलग अलग बॉन्ड हैं, और एक स्पष्ट आपको कर दूं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप 4 किलो तक ले सकते हैं,
एक ग्राम से
लेकर के 4 किलो तक आप ले सकते हैं। तो अगर आपके पास अतिरिक्त पैसे हैं तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की एक नई खेप आने वाली है, वो आप कर सकते हैं। अगर फायदा हो तो आप मेरे साथ साझा भी कर सकते हैं, ये आपसे कह सकता हूं मैं। दूसरा जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, चूंकि अब वो योजना रद्द की जा चुकी है, निरस्त की जा चुकी है, लेकिन अगर आपको याद हो तो पहले भी उसकी जो सीमा दी गई थी वो 1 करोड़ रूपये तक की थी, और मतलब ऐसा नहीं था कि आप 1 ही करोड़ ले सकते, ज्यादा भी ले सकते। जो बॉन्ड का वैल्यू था वो 1 करोड़ रूपये तक का था, और उसमें इंडिविजुअल भी ले सकता था, एक व्यक्ति भी ले सकता था, लेकिन याद रखिए जितेंद्र जी, अब वो बॉन्ड नहीं है।
ऑल राइट, लेट्स कनेक्ट टू मुंबई। हसमुख जी आर रेगुलर कॉलर इज देयर ऑनलाइन विद अस। जी हसमुख जी, सवाल पूछिए अपना।
या गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
गुड इवनिंग जी।
माय क्वेश्चन इज व्हिच सेक्टर शुड रेकमेंड फॉर फ्रॉम हियर वेर यू फाइंड अ वैल्यू फॉर एन इन्वेस्टर यू नो फॉर द होराइजन ऑफ 2 to 5 years फ्रॉम हियर।
ओके हसमुख जी, माय एडवाइस वुड बी, वन इज ऑफ कोर्स द बैंकिंग सेक्टर और द फाइनेंशियल सेक्टर्स विच आर हैविंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल्स, एंड पोस्ट इलेक्शन वी विल सी सम काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इन द ओवरऑल प्रोजेक्ट्स एंड ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर विच आर गोइंग टू बेनिफिट द फाइनेंशियल सेक्टर। सो दिस इज वन एरिया विच आई थिंक हैज अ गुड पोटेंशियल फॉर अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, एज यू मैंशन 2 to 5 years। अनदर एरिया which I think is also doing well, now doing well, is now is the IT sector, because the global demand, as soon as the global demand will pick up, the IT sector will also go up. The third sector is the energy sector, because we all know that this time we are going to face very harsh weather in terms of heat wave. So if there is a weather is harsh, it is of course a bad news for an individual, for a good news, but a good news for the energy companies, because they are going to produce more, the demand will be high. So these are some of the sector, financial sector, PSUs and the energy sectors, and of course some part you can park in the IT sector also.
But when you talk about energy, you mean all kinds, renewable or...
Renewable energy, as well as the conventional power sector, which is the thermal power plant as well as the renewable power plant.
Right.
और इस बीच दिल्ली से आरएस दहिया फोन लाइन पर आ चुके हैं। दहिया जी, आपका प्रश्न क्या है?
सर नमस्कार।
नमस्कार, प्रश्न पूछिए।
सर मेरा सिस्टर जी से क्वेश्चन है कि इन लास्ट अबाउट 6 months टाइम द शेयर मार्केट हैज रिजन क्वाइट अ बिट, ऑल पी रेशियोज हैव गॉन अप, आई मीन ऑलमोस्ट स्काई रॉकेटिंग, वेयर द कंपनीज प्रॉफिट हैव नॉट गॉन अप, इज इट एनी काइंड ऑफ बबल बिल्डिंग अप एंड इन्वेस्टर्स मे बी पुट इनटू ट्रबल, इज देयर एनी अप्रिहेंशन लाइक दैट?
Dahiya sir, if you can remember, just few times back, SEBI chairperson gave some comment on a specific category of shares, as he talked about bubbles, after which we saw a lot of selling pressure on those particular categories of shares. So sometime we are finding that in particularly in some category of shares, the valuation is slightly on a higher side, it's a more on a speculation side, but I always advise people that please go for the large caps which are really having a good potential. And if you are taking a say time horizon of 2 years or 3 years or 5 years or even for the short term, these shares are may not give you a very high return, but they will give you the reasonable return. And the most important thing is your principal will be safer in comparison to the other categories.
There are safe bet always.
There are always safe bet because the disclosure is very high, the liquidity is very high, people are more and more interested. Mm-hmm. So I always advise people to go for the large cap in a bigger way. Other category like mid cap and the small cap, the risk is slightly on the higher side. You may get a higher return, but the risk is also high. And economics says that the profit is the reward for risk, but we should assess that how much risk we can take.
There is a tendency of the let's say the middle class to invest most a lot more in the mid cap and small cap over the last few years. Does it show? Is that a change of you see that changing pattern amongst the investors?
It also shows that they are not very much comfortable in taking or buying a share which is available at a very high price. They are going for a medium price range or the or the lower price range. And there the mid cap and the small caps are available. But for the large cap, I mean, you have to shell out more.
Oh, yes.
So, but the risk is very high, as I'm telling again and again. And please do not go by the definition of economics, which says the profit is a reward for risk.
Mm-hmm.
I always say that please assess how much risk you can take before putting your money. After all, it is your money and you have earned after a lot of effort, a lot of hard work.
Exactly.
So please don't put it anywhere.
So you see your own risk-taking appetite.
Exactly.
All right. We move on. We are now joined by Harish calling us from Mumbai, the financial capital of the country, Mumbai. Ji, Harish, apna sawal poochhein.
Hello, namaskar, ma'am.
Ji, namaskar. Ji.
Ji, sir, namaskar.
Namaskar.
Sir, main agar physical gold bank leke jaun direct, to uske badle mein bond mil sakte hain sir?
कौन सा बॉन्ड आप कह रहे हैं?
सोवरेन बॉन्ड.
नहीं हरीश जी, नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लाने के पीछे मकसद यही था कि आप जो भौतिक धातु खरीदते हैं, जो सोना आप खरीदते हैं, वो ना खरीदें. और इसके पीछे सोच ये भी थी कि चूंकि हमारे यहाँ सोना जो है वो है नहीं, हम आयात करते हैं, तो जितना ज्यादा आयात होगा हमें ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा में कीमत चुकानी होगी, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर असर पड़ेगा. तो उसी को ध्यान में रखते हुए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लाए गए, जिसको हम लोग पेपर गोल्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि उसमें आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता, लेकिन फिजिकल गोल्ड की कीमत का आपको फायदा मिलता है. 8 साल की योजना है, 8 साल में आप 5 साल में भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन 5 साल में निकालेंगे टैक्स देना होगा. 8 साल में निकालेंगे जो कैपिटल गेन होगा उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है. हर साल आपको 2.5% की दर से ब्याज मिलेगा और 8 साल के बाद उस समय जो कीमत होगी बाजार पर वो उस हिसाब से आपको वापस मिलेगा. तो हरीश जी, इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके पास जो सोना पड़ा आप बैंक लेके जाएंगे और बैंक आपको उसके बदले में बॉन्ड दे देगा. हाँ, ये हो सकता है कि आपको लोन की जरूरत हो, कर्ज की जरूरत हो, वो आपको मिल सकता है.
Do you see another version of this scheme coming? You just mentioned.
Yeah, I think every year, every financial year, we see almost 6 or 8. Sometime it is 6, sometime it is 8. So we will see a fresh installment or the fresh issue of sovereign gold bond very soon.
Uh-huh.
And normally during the festive time, government comes out with, because people want to spend during that. Like from tomorrow, we have Navratri. So you will find a lot of people going to buy automobile or the newer product.
Right.
So you are not going to see the fresh issue of sovereign gold bond during this 9 days. But maybe after this month or in the month of May or in the month of June, we will see a first installment or the first issue of fiscal year 24-25 of the sovereign gold bond.
Right.
और कोलकाता से अतानु शाह फोन लाइन पर हैं, जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं. अतानु जी, आपका प्रश्न क्या है?
गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी.
गुड इवनिंग.
अतानु फ्रॉम कोलकाता. माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड हाउ डू अ बीट इन्फ्लेशन, मेनली पेंशन होल्डर्स पेंशन स्कीम नियर फ्यूचर, एंड व्हाट वुड बी देयर रोडमैप? थैंक यू.
ओके अतानु सर, इफ यू टॉक अबाउट द पेंशन, if you talk about the inflation, the classic definition of inflation is too much money chasing too few goods. That's a very simple definition of inflation.
Mm-hmm.
When the market is having more demand for the goods and the supply is not there, then the prices will go up. And this is the definition which I, as a student of economics, always follow that. Now, if you talk about how to beat inflation, so better is that if you diversify your disposable income, whatsoever income you have,
mm-hmm.
if you diversify, there is a possibility of beating the inflation. Because normally when you go to the bank, the interest rate may not be very high, and the real effective interest rate is somehow, sometime because of the higher inflation, it goes into negative one. But if you diversify into, say, mutual fund or some part in the stock market, I understand that for the pensioner it is not advisable to go to the stock market directly because of the age thing. So for them, the better thing is to go through the mutual fund, and they can go through the fixed income mutual fund, where the possibility of getting good return is there, and getting the fixed return is possible. And the other, which I feel is very good at this moment, is the post office saving schemes, what we call as a small saving schemes, whether we talk about national savings certificate, public provident fund, Sukanya Samriddhi or the post office senior citizen saving scheme, that's a very good scheme where the return is slightly higher,
yes.
And there you can beat the inflation. Mm-hmm. So my advice would be, as we say, that don't put all the eggs in the basket, in the same basket. So my advice would be, don't put all your money in the same category of asset. If you can diversify, there is a possibility of beating the inflation.
Right, right. Well said. Well, we are now joined by N.R. Prasad from Bengaluru. Yes, Mr. Prasad, please ask a question. Hello.
Hi, good evening, Market Mantra.
Good evening, yes.
Hi, Mr. Sinha, there are two questions.
Yes, please.
See, gold has reached its peak, highest price. But on the contrary, gems and jewelry exports declined over 15% for the fiscal 23-24. Would it revive in the coming Q1, Q2 of 24-25? My second question is, the print media has projected very good rains during monsoon. Will FMCG post a very good rally in the coming or in the next 6 months' time? These are my two questions. Thank you.
Okay. Mr. Prasad, if you can take the two things, gold and gems and jewelry, these are the two different things. Of course, the gold is the raw material in gems and jewelry, but gold is one of the raw material in gems and jewelry. We have diamonds and we have other metals also. So when we talk about gold, I mean, who are buying gold? Most of the central banks are buying gold. They are putting the reserves, and also individual who want to invest in the market. I mean, please remember, in India, we buy jewelries not from the investment point of view, but purely from the emotion point of view. I mean, during the marriage or during birth of a child, we buy gold. It's a pure emotional value. In terms of investment, you buy gold bullion, or what we call as the gold biscuit, or something like sovereign gold bond kind of thing. And there, the demand is a totally different, and demand for gems and jewelries are totally different. So at this moment, since we are seeing that many of the economies in the Western world are not having in a good health in terms of economy, so the demand is not very high. And that is why also we are getting affected. That is why the gems and jewelry import has been export has been slightly on the lower side. While the gold valuation is a different thing, as I told you, that is a purely investment point of view, it's a market-driven kind of thing, and that is why you are seeing gold reaching at a very high. Your second question was about the FMCG during the summer season. I believe FMCG will pick up, and there will be good scenario during the next 6 months to 1 year period.
All right, that was well explained. Moving on to the stocks in detail. Benchmark indices ended at their fresh closing highs today amid positive global cues and buying action in IT and auto names. The 30-share BSE Sensex jumped 494 points, or 0.67%, to settle at a new closing peak of 74,742.50. During the day, it zoomed 621 points, or 0.83%, to reach a record intraday high of 74,869. The NSE Nifty climbed 153 points, or 0.68%, to 22,666. During the day, it jumped 184 points, or 0.81%, to hit a lifetime high of 22,697. Among the Sensex constituents, Maruti, Mahindra & Mahindra, NTPC, JSW Steel, Larsen & Toubro, Reliance Industries, Axis Bank and Power Grid were the major gainers. On the other hand, Nestle, Wipro, Sun Pharma and HCL Technologies were the laggards. In the broader market, at the BSE, mid-cap index gained 0.26% and small-cap index fell 0.06%. In sectoral indices, at the BSE, auto sector rose 1.65%, oil and gas index jumped 1.50% and realty sector soared 1.20%. In contrast, IT index declined 0.55% and tech sector fell 0.10%.
एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखा गया। जापान के निक्केई सूचकांक में 0.9% की बढ़त दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.13% का उछाल आया। वहीं हांगकांग के शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 0.05% ऊपर चढ़कर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.70% और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स में 0.07% की सुस्ती आई। यूरोपीय शेयर बाजार की बात करें तो जर्मनी के डेक्स 0.55% के लाभ में और फ्रांस के कैक में 0.48% का उछाल आया। वहीं लंदन के फुटसी 100 में 0.07% की तेजी देखी गई। इस बीच हमारे साथ गाजियाबाद से गौरव जुड़े हैं। गौरव, आपका प्रश्न क्या है?
नमस्ते सर, मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो इतने डॉलर का रिजर्व बढ़ गया है, तो क्या सरकार अभी करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी से फुल कन्वर्टेबिलिटी पे जा सकते हैं कि जैसे हम लोग अभी इधर उधर डालते हैं पैसा, एक डॉलर में भी डाल पाए अपने पैसे जो हमारे को थोड़ा सा कम इन्फ्लेशन है, कि डॉलर में से सड़ता। और दूसरा सवाल सर, ये डी डॉलराइजेशन के संदर्भ में है, क्या कोई जो छोटी देश जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश अपना रिजर्व इंडियन रूपी में रखना चाहेगा या ओनली उतना पैसा रखेगा जो ट्रेड में? इसके मतलब यूएस डॉलर का महत्व तो बना रहेगा, तो कितना इस संदर्भ में रुपया का मतलब रुपया रखना चाहेगी ट्रेजरी, रुपए के आरबीआई के बॉन्ड दूसरे देश आसपास के?
गौरव जी, आपका जो पहला प्रश्न है कि फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को लेकर के, देखिए अभी के समय में बिल्कुल ये कहें कि हम रुपए और डॉलर को एक स्तर पे देखें, वो एक तरीके से देखें वो शायद अभी संभव नहीं है। डॉलर की अहमियत बनी रहेगी। और दूसरा सवाल चूंकि उसी से जुड़ा हुआ है, देखिए दुनिया भर में कुल व्यापार का लगभग 40% डॉलर में सेटल होता है, डॉलर में निपटाया जाता है। तो ऐसे में किसी और मुद्रा को अपनाया जाना बहुत ज्यादा संभव नहीं हो पाएगा, और होता भी है तो वो बायलेटरल बेसिस पे है। जैसे भारत के रुपए की बात करें तो 22 देशों के साथ हमारा समझौता है जिसमें हम रुपए में व्यापार जो है वो निपटा सकते हैं। तो इन 22 देशों के साथ कारोबार में यह भी एक समस्या आती है कि उनके पास रुपया बहुत ज्यादा हो जाता है जमा, वो उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। बीच में आपको याद होगा कि रूस ने इस बात को लेकर के कई मोर्चे पर, कई मंच पर उन्होंने इस बात को उठाया कि हम कैसे इसको करें। फिर जाकर के भारत सरकार ने कुछ नीतिगत फैसले लिए और ये जो था कि आप यहां पर निवेश कर सकते हैं रुपए में ही आप डॉलर के बजाय, तो वो व्यवस्था आई। तो देखिए डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट तभी जाकर के कामयाब हो सकता है पूरी तरह से, जब वहां पर डॉलर में कम सौदा निपटना शुरू हो, जो अभी लग नहीं रहा है। हाँ, रहा सवाल कि जो आसपास के देश हैं वो कितना रुपए की करेंसी अपने पास रखते हैं, वो जरूर रखते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। हम फिर आपसे कहेंगे कि अभी के समय में आपको ये ध्यान में रखना है कि 40% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में निपटाए जाते हैं।
But I guess you can pay at the Eiffel Tower in rupee, if I'm not mistaken.
You can use rupee, or you can use UPI to go for, even in Singapore also,
yes,
in the Gulf countries also. That's a different thing. His question was basically about the full account convertibility as well as the de-dollarization. Both the questions are linked with that, how much dollar is being used at the global level.
Right.
और इस बीच विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83.31 रूपये पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 104.38 पर कारोबार कर रहा था।
आफ्टर ऑल द टॉक अबाउट गोल्ड एंड डॉलर, लेट्स मूव टू ऑयल। ऑयल प्राइसेज डिक्लाइन टूडे एज वेस्ट एशिया टेंशन ईज्ड आफ्टर इजराइल विथड्रू मोर सोल्जर्स फ्रॉम सदर्न गाजा एंड कमिटेड टू फ्रेश टॉक्स ऑन अ पोटेंशियल सीजफायर इन द 6-month कॉन्फ्लिक्ट। द ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स was down at $90.47, where Western Texas Intermediate was also lower at $86.25 when reports last came in.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध के लिए सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। इस कीमती धातु का मूल्य 393 रूपये की तेजी के साथ 71,029 रूपये प्रति 10 ग्राम पर था। और अंतिम समाचार मिलने तक मई अनुबंध के लिए चांदी 1,052 रूपये की बढ़त से 81,915 रूपये प्रति किलोग्राम पर थी। दिन के कारोबार में चांदी की वायदा कीमत आज नई ऊंचाई 82,064 रूपये को छू चुकी थी। तो शिशिर जी, ये जो बढ़त चल रही है, कहां तक देखते हैं आप इसे?
देखिए एक भारतीय के लिए सोने का महंगा होना बहुत अच्छी खबर तो नहीं होती है
जी।
जिनके पास है उनके लिए
नहीं, मतलब हर कोई सोना खरीदना चाहता है तो ये थोड़ी अच्छी खबर तो नहीं है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जब तक वैश्विक अनिश्चितताएं, वैश्विक परिस्थितियां विपरीत स्थिति में बनी रहेंगी तब तक सोना भी चढ़ता रहेगा। और ये भी एक पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि सभी बढ़ रहे हैं, चाहे वो शेयर बाजार की बात करें और सोना की बात करें। कच्चे तेल ने आज थोड़ी राहत दी है क्योंकि इसराइल के तरफ से जो रुख आया उसके बाद उसमें नरमी आई है, लेकिन बाकी सभी तो बढ़ रहे हैं।
दिस इज अ बिट ऑफ अ पैराडॉक्स।
दैट्स अ बिट ऑफ अ पैराडॉक्स।
ऑल राइट फ्रेंड्स, बिफोर वी वाइंड अप, हियर्स अ लुक एट द हेडलाइंस अगेन। थैंक यू सो मच शिशिर सिन्हा जी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड अपडेटिंग अस विद योर व्यूज। हेडलाइंस नाउ, बेंचमार्क इंडिसेस सेटल एट फ्रेश क्लोजिंग हाईज, सेंसेक्स एंड्स ओवर 74,700, निफ्टी क्लोजेस एट 22,666, गोल्ड सरपासेस रिकॉर्ड हाई ऑफ 71,000 रुपीज फॉर द फर्स्ट टाइम, silver price surges to record highs, and oil prices decline as global geopolitical tensions ease. And with that, we come to the end of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Nikhil Kumar, signing off. Namaskar.
Namaskar. Market Mantra.